सिचुएशन है, क्या हम दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? आज जो दुनिया भर के सुबह न्यूज़पेपर्स में जो स्टोरीज छपेंगी वो यही छपेंगी कि बाप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहा है, जो दो दिन जो नैब के फलां फलां टीटी के केसेस में मतलूब है, और मकसूद चपड़ासी को अब वो क्या अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे, क्या उसे ओहदा देंगे। दूसरी तरफ पंजाब में हमजा जो उनका बेटा बन रहा है, खानदान गुलामा, हम सारे गुलाम हैं और ये हमारा हमारे बादशाह हैं, रूलर हैं हमारे, उनका बेटा बन रहा है। पूरे पंजाब में अगर 200 आपने एमपीए इकट्ठे कर लिए थे, उन 200 में से एक बंदा भी इस काबिल नहीं है कि वो हमजा शहबाज के मुकाबले में उसे आप आगे कर दें। आपको नजर भी आ रहा है कि ये महीना चलनी है, 6 महीने चलनी है, या मैक्सिमम 1.5 साल हुकूमत चलनी है। आप 1.5 साल के लिए भी किसी कारकुन को कुर्बानी का मौका नहीं देते। साद रफीक वहां असेंबली में बैठा हुआ, और लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने जिंदगियां उनकी गल गई हैं, मुस्लिम लीग नून को ऊपर उठाते उठाते। आपको कोई बंदा इस काबिल नहीं लगा। आपने फिर जब जीतने की पोजीशन आती है, आप अपने भाई को, भतीजे को, और बेटे को और बेटी को ले आते हैं। जब कोई हारने की बात आती है तो फिर आप रजा रबानी और इस तरह के लोगों को फिर इलेक्शन लड़वा देते हैं। जब आपको यकीन ही होता है कि ये इलेक्शन हम हार जाएंगे, जीतेंगे नहीं, जिस तरह चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रबानी को आगे कर दिया।
अच्छा फियाज भाई, एक क्वेश्चन है जो कि मैंने कल यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे चूंकि एक वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल मैंने जो है यहाँ पे शेयर किया था, लिंडसी और रूके की ने लिखा है वो, और उसके अंदर उन्होंने सीआईए के ऑफिशियल्स को भी कोट किया था, और वो कहते थे, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा जी मैंने खुद ये सारी जो है रिसर्च अपनी की है कि अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बहुत दफा बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो है इन्वॉल्व होती है रिजीम चेंज में, जो लोग उनको कभी पसंद नहीं होते हैं। तो इस तरह की बात ही कुछ इमरान खान साहब ने की थी। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर वाकई वो, जैसे अभी आपने डोनाल्ड लू का भी नाम लिया था, तो इस तरह की कोई चीज है? क्योंकि इमरान खान साहब चूंकि बहुत ज्यादा बोल्ड हैं, जो उनकी खास तौर पे जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही, जो जहां पे कि उसने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह, हम किसी से डरते नहीं हैं, तो आपको लगता है कि ये गोरे जो हैं जरा डर गए हैं इस आदमी से और ये चाहते नहीं है कि इस तरह का कोई मुसलमान रूलर आ जाए? जैसे कि क्योंकि वही साजिशें, वही चीजें जो कि ऑटोमन एम्पायर के वक्त थी, वही मुझे नजर आ रही हैं सारी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में?
नहीं, इमरान खान के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ना वेस्टर्न वर्ल्ड को डाउट है, ना मुस्लिम वर्ल्ड को डाउट है, ना पाकिस्तानी अवाम को डाउट है। इमरान खान की यूएन में स्पीच देखें, इमरान खान का फिर रशिया जाना देखें, फिर रशिया की अभी जो परसों स्टेटमेंट आई है रशिया वालों की इमरान के फेवर में, और उन्होंने ये पूरी बात जो बात आप कर रही हैं वो सारी बात रशियन ऑफिशियली रशियन गवर्नमेंट ने ये दोहराई है कि रिजीम चेंज की कोशिश हुई है और ये हो रहा है। चाइना उससे पहले इमरान के हक में बयान दे चुका है, ईरान पाकिस्तान इमरान के हक में दे चुका है, तुर्की इमरान के हक में दे चुका है, यूएई दे चुका है। तो जहां जहां ये इस तरह की सिचुएशन जो कर रहे हैं फेस, और फिर डोनाल्ड लू की वो जो कांग्रेस मैन को जो आंसर कर रहा है, और उस तरह जो इस तरह उसकी खिंचाई हो रही है और उसे पूछा जा रहा है कि भाई ये इन लोगों ने हमें जो है हमें सपोर्ट नहीं किया था अगेंस्ट रशिया जो यूएन में रेजोल्यूशन आई थी, तो इनका क्या किया तुमने? तो श्रीलंका साउथ एशिया का वो बंदा डोनाल्ड लू जो है इंचार्ज है साउथ एशिया का, तो वो श्रीलंका का तो उसने बताया कि वहां तो हमारा हमने कर लिया है, मामला हो जाएगा, और वो हो भी गया। और पाकिस्तान के बारे में उस वक्त तक उसके पास कोई नहीं था प्रॉपर जवाब, और वो बड़ा शर्मिंदा सा था कि मैं पाकिस्तान में उस तरह के रिजल्ट्स नहीं ले सका, और उस वक्त तक कल तक
तो ये इंडिया का तो उसने डॉज कर दिया सारा, इंडिया का तो निकाल ही दिया क्वेश्चन में से आंसर उसने।
हाँ जी, और फिर वो इंडिया जाके बैठ गया डोनाल्ड लू, और वहां इंडियन जर्नलिस्टों से उससे पूछा कि इमरान खान इल्जाम लगा रहा है कि आप जो है उसकी गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए, रिजीम चेंज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसका डोनाल्ड लू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अगली स्टेट में उसने ये कहा है कि हम पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर नजर रख रहे हैं, और हम पाकिस्तान में होने वाली आईनी और कानूनी सिचुएशन पे नजर रखें, होपफुली वहां से कोई बेहतर रिजल्ट आएगा। अब वो उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट में की तरफ था, क्योंकि उस वक्त जब पूछा गया उस वक्त तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका था। तो फिर पाकिस्तान में जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी अदालत को भी, हमारी आर्मी को भी, हमारे सारे इदारों को, सिर्फ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान को नहीं, और चंद जो इन इन ब्रोकर्स के जरिए पीटीआई के एमएनएज को ही नहीं, बल्कि हमारे तमाम इदारों को अमेरिका ने खरीद लिया है, तो जो लोग ये सोचते हैं मेरे ख्याल में उनकी बात में भी वजन है, क्योंकि ये सब कुछ आपको रातों रात आपको होता हुआ नजर आया है, और अब तो पूरी कौम ने देख भी लिया है। अब इससे आगे ये कहां तक लेके जाएंगे खेल, और उस खेल में वहां ले जाने तक इमरान खान इज वन पर्सन, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक के दिलों की एक आवाज बन चुका है, और लोगों की उसके साथ सेंटीमेंट्स अटैच हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। आप देखें 4 दिन पहले तक लोग उसको महंगाई और इस इन मसाइल पे लान तान कर रहे थे, लेकिन जो ही ये एब्सोल्यूटली नॉट वर्सेज बेगर्स आर चूजर्स और नॉट चूजर्स वाले दो स्टेटमेंट सामने सामने जब आई हैं, तो पूरी कौम एब्सोल्युटली नॉट की तरफ थी। और शहबाज शरीफ को लोग कह रहे थे, उसकी अपनी पार्टी वाले लोग कह रहे थे कि तुम्हें किस पागल ने कहा था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम ये कहोगे ये बेगर्स हैव नो चॉइस और बेगर्स आर नॉट चूजर्स।
ये तो इस वक्त तो प्याज भाई एक और भी आप बात बताएं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त कोई नजर आ रहा था कि शायद इस कौम को इस मुल्क की कोई थोड़ी बहुत इज्जत हो रही है, आप वो जरा वाकया थोड़ा सा ट्रेस करें। ये जो बहुत बड़े डेमोक्रेट्स बनते हैं, जिस वक्त ये कारगिल का मसला हुआ था और नवाज शरीफ साहब रोते पीटते सारे अपने खानदान के साथ बिल क्लिंटन साहब के पास अमरीका पहुंच गए थे, तो वो जरा बताएं, क्योंकि वो स्टोरियां हमने टैलबोट के मुंह से सुनी थी वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान में नैरेटिव उन्होंने आगे कहा था जी कि मैंने तो तुम्हारी जान बचा ली है वरना तो तुम्हें तहस नहस कर दिया जाता ये कारगिल की वजह से, तो मैंने तो, लेकिन असल में स्टोरी अमरीका में क्या हुई वो जरा बताएं, और फिर जरा हम उसके बाद हम दूसरी पार्टियों की तरफ भी जाएंगे, इनके किरदार जरा बताएं जरा जो है।
इमरान खान अपना उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे और नवाज शरीफ साहब अमेरिकन प्रेशर में आते थे,
हालांकि जिस वक्त ये अमरीका जा रहे थे तो इनको बिल क्लिंटन ने कहा था तुम मेरे पास अमरीका नो स्ट्रिंग्स अटैच के साथ आओगे, बिल्कुल कोई तुम्हारी प्री रिक्विजिट, और ये अपना सारा खानदान लेके उधर पहुंच गए थे, और इन्होंने इशारा किया था बिल क्लिंटन को कि अपने कमरे में से सब लोगों को निकालो, तो उसने कहा कि नहीं यहाँ पे कुछ लोग रिकॉर्ड करेंगे जो तुम्हारी स्टेटमेंट्स होंगी। बताया
जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सब कुछ उनकी शर्तें मान ली, सारा कुछ कर लिया। उसके बाद यह हुआ कि जब मीटिंग खत्म हो गई, मैं अगली हफ्ते बाद बताता हूँ कि हमारे कैसे कैसे हुक्मरान रहे हैं, इमरान खान जो पर्ची प्राइम मिनिस्टर ने कहता है या जो उसकी बातें करता है वो सच्चा है, इस बात के रावी जो हैं वो उस वक्त के कनाडा में जो काउंसल जनरल थे वो हैं, मैं नाम उनका नहीं लेता, अच्छी बात नहीं है, फिर उन्हें वजातें करनी पड़ेंगी, वो भी यहां से गए हुए थे। जरा प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका आ रहा होता है तो इस एरिया के जितने काउंसल जनरल और हाई कमिश्नर होते हैं, तो हमारा जो ऑटवा में हाई कमिश्नर थे वो भी वहां गए हुए थे उन्हें प्रोटोकॉल देने, तो वो रावी हैं इस बात के। तो हुआ ये कि मीटिंग करके आ गए क्लिंटन से, तो सुबह अचानक उन्होंने उठ के उन्होंने कहा जी मैंने नाश्ता करने जाना है, मुझे तो प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस नाश्ते पे बुलाया हुआ है। उन्होंने सब ने परेशान हो गए सारे पाकिस्तान हाई वहां पाकिस्तान एम्बेसी वाले कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। मियां साहब ने कहा नहीं, मुझे उसने कहा था कि तुमने नाश्ता सुबह मेरे साथ करना है। ये पहले दिन जिस दिन मुलाकात हो गई उसे अगले दिन की बात है। मियां साहब को उनकी कोई बात समझ नहीं आई, इंग्लिश नहीं समझ सके या क्या बात हुई या कोई, मियां साहब को आपको पता है जहां जाते हैं खाने पीने की चीजों की बात करते हैं, तो मे भी इन्होंने कोई खाने पीने की बात की होगी, उन्होंने कुछ कहा होगा कि कभी करेंगे मिलके, इन्होंने बताया होगा फलां नियारी अच्छी होती है, पाए अच्छे होते हैं, फलां होता है, तो उन्होंने कहा होगा कभी करेंगे। मियां साहब ने शायद ये समझा कि उसने कहा कि सुबह हो फिर तुम्हें सुबह ही करा देते हैं नाश्ता। मियां साहब ने अपनी एम्बेसी को वक्त डाल दिया, इन्होंने कहा जी कि मुझे प्रेसिडेंट साहब ने सुबह नाश्ते बुलाया, मैंने नाश्ते पे जाना है। अब वो अप्रोच कर रहे हैं व्हाइट हाउस को, जितने उनके हैं डिपार्टमेंट जहां जहां उनके रबते थे उन्होंने सबसे पूछा, उन्होंने कंफर्म करके बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब ने अपने स्टाफ को इतना तंग किया कि ये व्हाइट हाउस के गेट पे पहुंच गए और उन्होंने अंदर इन्हें जाने दिया, और अंदर जाके एक उन्होंने गेस्ट रूम में बिठा दिया। अब वो अपने टाइम पे उन्होंने फर्स्ट लेडी ने और उसने उठना था, और उनके उठने के बाद उनकी अपनी इंगेजमेंट थी, वो इतना फारिग आदमी तो नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है ये। अब दोनों बेगम कुलसुम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ वहां उनकी एनेक्सी में साइड पे बैठे हुए हैं कि जी हम नाश्ता करने आए हैं, और पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और उनके जो ऑफिशियल्स हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हंस रहे हैं कि ये कैसा इस पाकिस्तान का सरबराह है कि इसको हम बता रहे हैं कि तुम्हारा नाश्ता नहीं है और ये करने आ गया बेगम को लेके। क्लिंटन ने उठते हुए अपनी बेगम को हिलरी को जबरदस्ती सोती हुई को उठाया कि उठो बाहर तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं तो मीटिंग में जा रहा हूं, तो प्लीज वो बजिद कर रहा है कि मैंने कल नाश्ते का कहा था तो उसके साथ जाके तुम नाश्ता कर लो, मैं जा रहा हूं मीटिंग में। और हिलरी क्लिंटन को उठा के उसने भेजा, और खुद वो अपनी जहां भी उसकी मसरूफियत थी, वो प्रेसिडेंट था, तो फिर हिलरी ने इनके साथ बैठ के नाश्ता किया। ये सिचुएशन थी। अब एक तरफ ये लोग थे, दूसरी तरफ इमरान खान है जो
एक वो भी वाकया ट्रेस कर दें, जब जरदारी साहब आए तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमको ड्रोन्स का आप मरने का आप जो है इजाजत दें, तो उन्होंने कहा जी जितने मरने मारो, जितने बंदे मरते हैं मरते कोई मसला नहीं है, तो 400 के करीब तकरीबन ड्रोन अटैक, वो भी जरा थोड़ा सा ट्रेस।
हाँ, तो उन्होंने ये जरदारी साहब ने ये एक्सेप्ट किया था, ये माना था कि कोलैटरल डैमेज तो होता रहता है, तो बेसिकली इनके लिए हम जो इंसान हैं पाकिस्तानी शहरी हैं हम कोलैटरल डैमेज हैं, वी आर नॉट मोर देन दिस। फिर एक और तीसरा करेक्टर उनके पास मौलाना फजरमान साहब को आप देखिए, कल वो आसमा शिराजी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि उन्हें लग रहा था कि शायद फैसला हमारे हक में नहीं आ रहा, उन्होंने थ्रेट किया इदारों को बाकायदा, और उन्होंने कहा कि अगर फैसला इस तरह ना आया तो फिर हम बताएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं अब इदारों का नाम लूं, इदारे जो है न्यूट्रल नहीं रहे, और इदारों का मैं अब नाम लूं और मुझे मजबूर ना किया जाए फिर मैं नाम भी लूंगा। और उन्होंने कहा कि जो उनकी जेब में शिनाख्ती कार्ड है वही शिनाख्ती कार्ड मेरी जेब में भी। भाई बिल्कुल ठीक बात है, आपकी जेब में वही शिनाख्ती कार्ड है, लेकिन आप इस तरह थ्रेट करने का आपको हक किसी ने नहीं दिया कि आपके पास अगर चार मदरसों के लोग हैं, बेसिकली पार्लियामेंट्री तौर पर देखा जाए तो आपके पास 14-15 एमएनए की सीटें हैं, दैट्स इट, मोर देन नॉट मोर देन दैट, और वो भी किस तरह है, किन इलाकों में है, और आइंदा इलेक्शन में होंगी या नहीं होंगी वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। आपने केपी के बल्दियाती इलेक्शन में देख लिया कि आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है, यू आर नॉट इन दैट पोजीशन कि आप इस तरह थ्रेट कर सकें, और अगर हों भी तो थ्रेट करने की वजह नहीं बनती। मेरे ख्याल में इमरान खान इस पूरी सिचुएशन में, मुझे उसने अरशद शरीफ को इंटरव्यू दिया है, एक इमरान रियाज खान को इंटरव्यू दिया है, दोनों ने उसे बहुत इंस्टिगेट किया है, उससे आर्मी के बारे में क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मेरे आर्मी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसने अपने वर्कर्स को भी कहा है कि प्लीज पाकिस्तान आर्मी के बारे में, इदारों के बारे में कोई गलत बात ना करें, वो हमारे इदारे हैं, वो हमारे, उन्होंने हमें जोड़ के रखा हुआ है, और उनकी वकार और उनके तकद्दस का हमें सबको ख्याल रखना चाहिए। अभी तक इमरान खान साहब ने इदारों के बारे में कोई गलत बात नहीं की, और अल्लाह ना करे कभी वो करें, मेरे ख्याल में उन्हें ये साइड अपनी मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में और अमेरिका के साथ तो उनकी बिगड़ चुकी है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन से चल पड़े हैं, उनके भी प्लेटलेट्स हाई हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब अचकन लेके बैठे हुए हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ पार्टनर इन क्राइम आसिफ जरदारी जैसा जीनियस आदमी है, और फजलुर रहमान जैसा खूनखार आदमी है, ये सारे लोग, और फिर अख्तर मेंगल साहब हैं, ये सारे लोग मिल मिला के यकीन माने पीटीआई का एज ए पॉलिटिकल पार्टी बहुत बुरा असर करेंगे। अगर इस मौके पे इमरान खान साहब ने अगर टेंपर लूज किया और अगर उन्होंने कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जो कि मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, जरदारी साहब ने आपको याद होगा स्पीच में कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप तो 3 साल के लिए आर्मी चीफ आते हो, मैं तो हमेशा के लिए यहां हूं, और नवाज शरीफ साहब ने लंदन बैठ के अपनी एक स्पीच में 14 दफा DGISI और आर्मी चीफ को इनाम लेके उन पर तनकीद की थी, वो सारे तो यहां तक जा चुके हैं। अगर इमरान खान साहब ने भी उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया, then it is going to be a big disaster, and then we should be ready for Bhutto too. जो भुट्टो का अंजाम था फिर इमरान का भी वही होगा, लेकिन इमरान पब्लिक इमरान के साथ है, इमरान को आर्मी के बारे में कोई गलत रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, इमरान को इदारों को मजबूत करने के लिए बात जरूर करनी चाहिए, और पब्लिक के साथ जुड़े रहना चाहिए, असेंबली से इस्तीफे नहीं देना चाहिए, असेंबली के अंदर बैठ के इनका मुकाबला करना चाहिए, जो लोग इसके छोड़ के जाए उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लास लेके आए, 10-20-30 जो भी हो वहां जिमनी इलेक्शन लड़े, वहां बेशक आधे जीते ज्यादा जीते, कम से कम अपोजिशन को मसरूफ रखे, उन्हें एंगेज रखे, और अगर वो घर बैठ गया रिजाइन करके, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम।
फैज, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आज डिसीजन आया है, इसको कोई ऐसा है कि जिसपे अपील कर सकते हैं?
आई डोंट थिंक सो,
नो,
क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड कर रहा था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद हेड कर रहे थे, और टाइम नहीं है। अगर आप लार्जर बेंच की रिक्वेस्ट भी करते हैं, लार्जर बेंच में जो बंदे रह गए थे वो तो काजी फायज ईसा और दूसरे काजी अमीन हैं और दूसरे लोग हैं, और जब चीफ जस्टिस एक डायरेक्शन में चल पड़ता है तो बाकी अक्सरियत उसी तरफ चल पड़ती है, और ये 5-0 से डिसीजन आया है, तो इसका मतलब है ये 5 तो पहले ही अगेंस्ट हो गए, छठे काजी फायज ईसा साहब हो गए, तो अगर 6 पहले ही आपको पहले दिन से ही पता है कि आपके खिलाफ जाएंगे तो बाकियों को भी खिलाफ जाएंगे वो भी, और इतना टाइम कहां है अब इस वक्त? इस वक्त तो आपको पता है उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, 2 दिन बाद परसों असेंबली का इजलास है, उसमें इमरान खान साहब इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फिर आगे वो आ जाते हैं। अब तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये सिचुएशन और थोड़ी सी गंभीर होगी, और बिल आखिर इन्हें दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन अगर दोबारा इलेक्शन की तरफ फौरी तौर पर ना गए और वाकई शहबाज शरीफ साहब ने अचकन पहन ली और शहबाज शरीफ साहब सीट पर बैठ गए, तो फिर आज जो लोग बात करते हैं ना कि इमरान खान फासिस्ट है और फस्तायत, असल फासिज्म फिर देखेंगे आप, क्योंकि इन लोगों का नाक में दम किया हुआ था इमरान खान ने। इमरान खान ने अपने जाती दोस्तों को, जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसों को नहीं बख्शा, जब उसने देखा कि ये गलत काम कर रहे हैं, आटा चोरी में या चीनी चोरी में ये मुलव्वस हैं, किसी तरीके से मुलव्वस नहीं भी हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन को उसने कहा कि तुम इस इंडस्ट्री में थे, तुम इस काम में थे, इस शोबे में थे, इस बिजनेस में थे, तो मैं तो तुम पे तकिया बैठा हुआ था, करके बैठा हुआ था कि अगर इधर कुछ गड़बड़ होगी तो तुम मुझे बताओगे, तुम्हारा फर्ज था मेरे बीइंग अ फ्रेंड कि तुम मुझे बताओ कि ये चीनी के सेक्टर में ये काम हो रहा है, मुझे ये चीनी कमीशन से क्यों पता चल रहा है कि ये हो रहा है, तो वो इसलिए उन्होंने जहांगीर तरीन को भी नहीं फिर अपने करीब आने दिया, अलीम तरीन को भी नहीं आने दिया करीब, क्योंकि अलीम तरीन के भी उसके केसेस थे और वो जमीन के वो
यही यही मसला है जी, यही मसला है कि ईमानदार आदमी को टिकने नहीं देते। हम थोड़ी सी कॉल्स लेंगे फियाज भाई, जस्ट फ्यू कॉल्स और फिर हम जो है वो आगे चलेंगे. आपकी बातें तो ऐसी हैं कि लगता है दिल चाहता है कि और दो घंटे बंदा सुने. जो इनसाइट आपकी और जो आपने आज अंदर की खबरें बताई हैं, ये तो बात हमारे ये जो नेले बैठे हुए हैं पाकिस्तान में चैनल्स पे, ये तो ये बातें कर ही नहीं रहे हैं.
मैंने तो आपको दुनिया में बैठे हुए हैं. मैंने कासिम सूरी का जो था वो सरप्राइज, वो भी मैंने आपको याद होगा पहले बता दिया.
आपने तो सारी डिटेल्स पहले ही बता दी थी इस सारी चीज.
मैंने बता दिया था, पूरे पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बताया था. मैंने बताया था कि इतना होगा और ऐसे होगा, ऐसे ही हुआ.
फयाज, हमारे पास कुछ कॉलर्स हैं, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स. पहली कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए सर.
जी अस्सलाम वालेकुम, महमूद फरहान जी, क्या हाल है आपका?
खैर है जी महमूद भाई.
जी मेरा ये सवाल है कि देखेंगे बाहर की हुकूमतें भी, रशिया ने भी और इवन के अमेरिका के सेनेटर ने भी कह करते हैं बाहर की हुकूमतों को चेंज करने में, और हमारे जज साहब पता नहीं कहाँ से सोए हुए हैं. उन्होंने उसको टच भी नहीं किया कि वो हमारे पे वो हो रहा है. दूसरा है, जब इन्होंने एमपीओ के लिए केस किया कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो उसमें कहते हम पार्लियामेंट की कार्रवाई में दखल नहीं देते. तो इसका मतलब है कि आपसे एडी करें, खुल के करें, पैसे लगाए, घोड़े खोते खरीदे सारे, वो जायज है सारा कुछ.
ओके ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया, थैंक यू. हाँ जी भाई, हॉर्स ट्रेडिंग पे आज बात नहीं की उसने अदालत ने, उसके ऊपर वो क्वेश्चन था उनका.
टोटली नहीं गए. यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि इमरान खान के जो गवर्नमेंट की साइड के वकीलों की टीम थी, नाम देखें तो बड़े बड़े हैं. खालिद जावेद खान साहब थे अटॉर्नी जनरल, और उनकी मुझे समझ नहीं आती कि आप एक केस लड़ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि ये मेरा आखिरी केस है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ. इट मीन्स कि आप अटॉर्नी जनरलशिप से इस्तीफा दे रहे हैं और आप जा रहे हैं. ऐसे बंदे को तो केस, इतना इंपॉर्टेंट केस लड़ना ही नहीं चाहिए जो आउट गोइंग हो. उन्हें तो लड़ने ही नहीं देना, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भेज देना चाहिए था, जिसे जिसके अपने कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं अपने कैरियर के, और वो किसी जोश जज्बे से लड़ता है. एक बंदा जो जा रहा है छोड़ के, उसको तो लड़ने ही नहीं देना चाहिए था. अटॉर्नी जनरल साहब ने जब ये कह दिया कि मैं स्पीकर की रूलिंग को डिफेंड नहीं करूंगा, बेशक उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिकली कहा होगा कि इस एरिया को मैं नहीं टच करूंगा, इस एरिया को फलां फलां टच करेगा, लेकिन वहां तासुर ये मिला कि शायद ये डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं मैं डिफेंड नहीं करूंगा स्पीकर की रूलिंग को. तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी. बाबर अमान साहब की परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी हमेशा की तरह. वो सिर्फ बातों के बाहर हैं, गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है. उन्होंने कोई मेहनत नहीं की हुई थी. नईम बुखारी साहब से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी मेरी कि वो जब आएंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे. नईम बुखारी साहब ने भी कोई बेहतर काम नहीं किया. इम्तियाज सिद्दीकी साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लॉयर थे, उनका भी कोई बेहतर नहीं था.
तो जितने लोग
कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी.
नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
जी अस्सलाम वालेकुम.
क्या नाम है आपका सर?
जी मैं अजल बोल रहा हूँ. जिस तरह बाजी कह रहे थे, बिल्कुल ये बहुत बड़ा डब्बा है. इन्होंने बहुत, मेरे हिसाब से लफ्ज नहीं है, बहुत जालिम लोग हैं ये. इन्होंने बहुत
क्वेश्चन कर लें सर.
ये है कि ये इंसाफ नहीं है.
ओके
बहुत शुक्रिया,
ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट कॉल
जी.
हेलो
जी जी,
माजिद भाई मैं ऑन द एयर हूँ.
हाँ जी, आप ऑन द एयर हैं हमजा साहब, मगर वेरी शॉर्ट.
मैं ही शॉर्ट रखूंगा कि पूरे 22-24 करोड़ में एक इमरान खान ईमानदार है, बाकी सारे डाकू हैं. तो फिर ये परवेज इलाम पंजाब का कल तक डाकू था, तो वजीर अला क्यों मुंतखब कर दिया? एंड ऑफ द डे भाई पॉलिटिक्स होनी है. जब पॉलिटिक्स होनी है, आइन को उन्होंने उठा के इतना तो ज़ियालक और मुशरफ ने डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई जो इन्होंने दिखाई. और 80 मेंबरान के साथ 5 साल पीपल्स पार्टी निकालती है, 160 के साथ पीटीआई नहीं निकलती, क्योंकि इमरान खान का रवैया अपने मेंबर्स के साथ इतना खराब है, तो इत्तेहादी क्या उनके साथ चलते हैं?
बहुत शुक्रिया सर,
ठीक है, थैंक यू वेरी मच. यानी जिसको भी इमरान खान कहेगा कि भाई पैसा जो लूट के लेके गए हो वो पैसा वापस लाओ, तुमने करप्शन नहीं करनी, मुल्क का पैसा नहीं खाना, बस वो उसके खिलाफ अब हो जाएगा और कहेगा
इमरान खान. ये जो साहब कह रहे हैं ना, ये इनका मौकफ अपनी जगह ठीक है. हर किस्म के लोग, हर किस्म के, हर बंदे की अपनी राय होती है. उनकी बात उस लिहाज से ठीक है कि इमरान खान साहब को अपने MNA से बना के रखनी चाहिए थी. अगर 3.5 साल में वो अपने MNAs को काबू नहीं रख सके, तो जाहिर है MNAs को पुरानी आदतें पड़ी हुई थी कि वो हर वक्त जो है मांगते ही रहते थे कि हमें फंड्स दें, फलां दें, फलां दें, फलां दें. और इमरान खान ने तो पहले दिन, अब देखिए हमारा दोस्त है रऊफ क्लासरा, वो पहली जर्नलिस्टों की जो मीटिंग हुई थी इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उससे मिलने गए और इमरान खान 1.5-2 घंटे उन्हें बता रहा है कि ये नया पाकिस्तान है, हम इस तरह बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे. 1.5 घंटे बाद जब उठे तो रऊफ क्लासरा साहब ने एक दरखास्त उनके आगे की कि जनाब ये बखर रोड जो है ये बड़े अरसे से खराब है, ये बना दें. तो रऊफ क्लासरा की तरफ देख के इमरान खान ने कहा कि भाई मैं 1.5 घंटे यही बात बता रहा था कि हाँ जिस बंदे का काम होगा वही करेगा, फिर आप एप्लीकेशन मेरे सामने उठा के ले आए हो। तो रऊफ कलासरा साहब को बड़ा फील हुआ कि ये मेरी बेइज्जती कर दी है सब जर्नलिस्टों के सामने इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा कि भाई ये जिस बंदे का काम है, जो रोड डिपार्टमेंट का बंदा है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाला मुराद सईद है या पंजाब की हाईवे है, वहां का महकमा शाहरात है, वहां रब्ता करो, उन्हें कहो तुम्हें हर बंदा जानता है, वो अगर उसमें उनके बजट में फंड्स में और ड्यू होगी तो वो आ जाएगी और हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये काम मैंने खत्म करने हैं, इस तरह नहीं होना काम अब।
तो वो
दिन रऊफ कलासरा साहब ने नाराजगी बना के बैठे हुए हैं इमरान खान से, और रऊफ कलासरा साहब की अभी थोड़ी देर पहले भी मैं उनका वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सुबह दोपहर उठे, शाम को उठे हैं तो इमरान खान के खिलाफ ही वो बोलते रहे हैं। रीजन अगर चेक की जाए तो आगे से जाके रीजन को ऐसी निकलती है कि किसी का नलका नहीं लगा, किसी की सड़क नहीं बनी, किसी के भतीजे को नो जॉब नहीं मिली। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हमारी कौम का ये हाल हो गया है कि आज हमारे यहाँ अमरीका यहाँ बैठ के कह रहा है कि हम रिजीम चेंज जिस तरह करना चाहें हम रिजीम चेंज ला सकते हैं, और उन्होंने करके।
इसलिए मैं सुबह भी कहा था अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा मैंने कि ये जीत जो है ये पाकिस्तान की दो पार्टियां या 12 पार्टियों की नहीं है बल्कि ये अमेरिका की जीत है।
जी
नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी कौन बात कर रहे हैं?
मेरा नाम खालिद मीर है, मैं सुबह से सुन रहा हूँ ये बात। मुझे एक ही समझ नहीं आ रही कि इमरान खान जब शुरू में आया था तो उसने कहा था कि मैं अदलिया को इंतजामिया से अलहदा कर दूंगा, तो ये क्यों नहीं कर सका इसको अदलिया को इंतजामिया से अलहदा? मेरा सवाल ये।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारी पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना तो स्टेप पे हर एक स्टेप पे आपको अमेंडमेंट्स की जरूरत है। एक तो हमारा पीनल कोड बहुत पुराना हम चला रहे हैं, पता नहीं 1951 का और फिर उसके बाद 61 का 54 का भी दरमियान में, पहले तो बेसिकली हमारे लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत है। फिर 1985 से लेकर आज अभी 22 तक, ये पिछले 35-37 सालों में ये जरदारी खानदान और ये नवाज शरीफ खानदान, इन्होंने बारी बारी बारियां बदलने के दौरान हमारा स्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम, हमारी आदतें इस हद तक खराब कर दी हैं कि अब सीधे तरीके से कोई बंदा काम वहां करना ही नहीं चाहता। अब वो तब्दील किस तरह किया जाए, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। आप नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस के जरिए आप सिर्फ 3 से 6 महीने तक काम चला सकते हैं, उसके बाद दोबारा आपको ऑर्डिनेंस कराना पड़ता है। तो इमरान खान साहब इसलिए नहीं कर रहा सके चीजें चेंज, तब्दीली ला सके सिस्टम में और इन सब में, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी और अपोजिशन ने उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं किया, वो बैठते ही नहीं थे। इमरान खान साहब ने कहा आए इलेक्शन की करते हैं अपनी अमेंडमेंट्स, नहीं उनके साथ आए। इमरान खान ने हर तरह की अमेंडमेंट्स के लिए उनसे बात की, वो उनके साथ आके नहीं बैठे। बेसिकली तो लॉ जो लॉ मेकर्स होते हैं उनका असेंबली में जाके नालियां गलियां और सड़कें पक्की कराना काम ही नहीं होता। ये तो इन्होंने रवायत कायम कर दी है हमारे इन हुक्मरानों ने कि जी एमएनए बनना है तो सिर्फ अपनी तनख्वाह, अपनी मराहत और अपनी जो हमने तरक्याती फंड्स लेने हैं बस वो, और उन तरक्याती फंड्स में भी आपको पता है 20-50% उनके कमीशन होते हैं। और वो कमीशन अभी जब मुराद सईद फॉर एग्जाम्पल रोड्स डिपार्टमेंट, एक लड़का अच्छा आया उसने काम किया तो उसने बताया कि मैंने 24 करोड़ फी किलोमीटर जो सड़क बन रही थी उसने 16 करोड़ फी किलोमीटर में 5 साल बाद बना के दिखा दी। और आज अगर मियां साहब या वो लोग होते तो वो 24 वाली शायद अब 40 करोड़ फी किलोमीटर में बना रहे होते। उन्होंने कहना था महंगाई बहुत हो गई है और ये 16 करोड़ फी किलोमीटर में बना रहा है। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मेरे भाई जब तक हम उसे 2/3 मेजॉरिटी नहीं देंगे, जो कि अब मुझे एक ख्वाब लग रहा है दीवाने का, बहुत दूर हो गई हैं चीजें। अगर शहबाज शरीफ के परसों हाथ में चीजें चली गई तो उसके बाद ये जो आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम कभी वोट डालेंगे और हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो ये चीजें आपके आपके ख्वाब बहुत दूर हो रहे हैं ताबीर से।
ओके,
नेक्स्ट कॉल क्विकली। भाई साहब बहुत जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा, वेरी शॉर्ट टाइम बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
मज भाई मेरा सवाल ये है कि एक केस था 63A का भी, वो मेरा ख्याल है इससे पहले था केस, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसको क्यों नहीं पाया तकमील तक पहुंचाया कि ये वो शरीफ डॉक्टर है नहीं है कि हम वकील नहीं करते जज करते हैं। प्लीज
बहुत शुक्रिया जी।
अब ये लोगों की तरफ से आप सुन लें हमें इस पे मजीद तबसरा करने की जरूरत नहीं है, हमारे लोगों में इतना शऊर आ चुका है, लोग इतना समझते हैं चीजों को। आप देखें पिछले मियां साहब की इसहाक डार की और उनके खानदान का जीना अजीरन हो चुका था वहां लंदन में, वो बाहर नहीं निकल सकते थे, जहां जाते थे लोग उनपे आवाजें करते थे और बातें करते थे। अब जो है पाकिस्तान में भी आसान नहीं होगा, ये सोशल मीडिया का दौर है, आप देखें सोशल मीडिया पे अभी से लोगों ने क्या कुछ शुरू कर दिया है, मुश्किल होगा। लेकिन क्या ये मम्मी डैडी बर्गर जो हैं इमरान खान के पीटीआई के, वो इस टफ टाइम में से खैर खरीत से गुजर सकेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन।
दे नीड एन एडवाइजर लाइक यू।
नेक्स्ट कॉलर लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैं फैयाज भाई से एक सवाल है कि अगर ये सूबाई और कौमी असेंबली से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा?
बहुत शुक्रिया सर।
थैंक यू
जी। आपका क्वेश्चन ठीक है। असेंबली से इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी कि आपके पास, आप अकेले एक पार्टी इस्तीफा दे रही है, कोई दूसरा नहीं दे रहा। इस पार्टी में भी मैं आपको अभी बता रहा हूं कि परसों इमरान खान ने जो अपनी मीटिंग उन्होंने की है उसमें 155 लोग थे। आज अगर इमरान खान कहे कि हम इस्तीफा दे रहे हैं तो ये 110 से ज्यादा नहीं होंगे। 45 बंदे रिजाइन करने से इनकार कर जाएंगे और आप फोर्स नहीं कर सकते किसी एमएनए को कि वो रिजाइन करे अपने हल्के से। उसने अपने वोटरों से वोट लेके आया हुआ है और वोटर ने उसे वोट दिया है 5 ईयर्स के लिए, तो वो लोग तैयार नहीं होते इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा अगर दे भी दें और जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ और फिर वो इदारे, अगर कहा जाए कि वो सामने या ढके छुपे उनके साथ हैं और जब हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर तो उनका फर्ज बनता है, वो कहेंगे जी हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो हम वो ही कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही कहेगा, चीफ आर्मी स्टाफ भी यही कहेगा और अदलिया तो वैसे ही कहते हैं जी हमारा तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं फैसले सुनाने पे आते हैं तो अपनी मर्जी के सुनाते हैं, वैसे कहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं।
मौलाना फजलुर रहमान भी
इस्तीफे कुछ नहीं कर सकेंगे।
अच्छा व्यास भाई,
फजलुर रहमान ने भी पहले बहुत कोशिश की थी, सारे लोगों को कहा कि भाई सब हम इस्तीफा दे देंगे, मगर वो दिसंबर भी गुजर गया और जनवरी भी गुजर गया,
कोई नहीं देता,
मार्च भी गुजर गया।
व्यास भाई आपको पता है वो वाकया, आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक दफा गए थे अमेरिकन एम्बेसी में, उनको कहा था कि जी मुझे बैक करो, मुझे इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तो इस तरह का कोई सिनेरियो आ सकता है कि ये खुदा ना खासा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं पाकिस्तान?
नहीं नहीं नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा,
अब जस्ट आप इमेजिन करें, आप इमेजिन करें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अपना फजलुर रहमान साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो और उसके बाद फिर वो यहां से, आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज के जो है वो प्रेसिडेंट ही जाते हैं पाकिस्तान के दौरे पे, या कहीं इंटरनेशनली कहीं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इनवाइट किया जाए और वहां फजलुर रहमान साहब रिप्रेजेंट करने आपको जाए तो क्या सिनेरियो होगा?
ओह माय गॉड,
जस्ट इमेजिन इट।
वो तो पढ़कर फूंक देंगे उन पे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम
जी। क्विक क्वेश्चन,
फयाज बुलाना साहब मेहरबानी, आपने वो राउत कुलासरा साहब बेहतरीन हैं
हमारे, सर क्वेश्चन करें, बस टाइम बहुत कम है,
बहुत अच्छे हैं हमारे तो दोस्त हैं।
उनकी तरफ आ रहा हूँ, उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ, आपका दोस्त है ना?
जी जी, दोस्त है मेरे।
तो आपको याद होगा या माजिद साहब को याद है कि काजी अगम जब ज्यारत में थे ना तो एक नर्स ने उनकी बड़ी खिदमत की थी, तो उन्हें कहा कि भाई बेटा मैं कुछ कर सकता हूँ, उसने कहा था आनी मेरी ट्रांसफर करा दें, तो काजी अगम ने माफरत कर ली थी कि मैं जो है ना ये नहीं, बेशक गवर्नर जनरल हूँ लेकिन ये काम।
सर अपना क्वेश्चन करें, मेरे पास तीन कॉलर्स, नहीं नहीं सर पहले क्वेश्चन करें आप, क्योंकि मेरे पास दो कॉलर्स बाकी, मेरे पास तीन मिनट हैं।
मैं जनाब ये बता रहा हूँ उसकी बजाय कि इमरान खान ने भी कलापरा को वो कायदम वाला जवाब दिया और अब जो है
बिल्कुल ठीक।
अच्छा अब जो ये पाकिस्तान ये है कि 58 में भी हमारी अदालत ने उसका का जो है ना,
बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपसे बाद में बात करेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल क्विक क्वेश्चन सर, मेरे पास सिर्फ तीन मिनट बाकी हैं। हेलो
हेलो, हाँ जी मैं ऑन एयर हूं।
जी 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 ऑन
एयर।
हाँ जी, एक आप गल करते इन्हों ने इलेक्शन की करी थी भी जो बाहरले मुल्कों च बैठे ने पाकिस्तानी उन्होंने वोट पानी चाहिए है। देखो पाकिस्तान के जब तक घट्टो घट भी दो तीन बारी सरकार चंगी तरह वोटा पैके नहीं बनती, उत्थे सिस्टम नहीं चलता, उदों तक कदे नहीं पौनी चाहिए पवालियां वोटा ना बाहरले कंट्रियां दी, ना सिस्टम जमा ही बह जूगा, उदा उत्थे नहीं कोई मानदा इस किवें बनूगा। बाकी ने राष्ट्रपति की गल करी थी, जेड़ा हुण राष्ट्रपति ने डॉक्टर साहब उन्होंने जिन्ने डिसीजन करे ने कोर्ट ने सारे बैक करे ने, वो डिसीजन उदा सारे जिवें कहिंदा सी इमरान खान कहिंदा सेम डिसीजन साइन करके भेज दिंदे।
बहुत मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, मैं माजरा चाहता
हूं,
मेरे को टाइम नहीं है सर, टाइम बड़ा काटा है, बहुत सॉरी सर, सॉरी सॉरी। हाँ जी लास्ट कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आप नहीं है तो एक और लास्ट कॉल ले लेता हूँ, बाकी सारी कॉल्स हैं, मैं बहुत माजरा चाहता हूँ, बस टाइम नहीं है सर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्विकली।
अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम।
ये मैंने ही पूछना था कि सैटरडे को तो ये हो जाएगा फैसला इनका, तो फिर संडे को क्या फिर कोर्ट लगा के इमरान खान को फांसी चढ़ा देंगे? और पहले मैं बचपन में था, नौ सितारे नौ भाई, तो उसके बाद अब तो ये जब उसको फांसी चढ़ा देंगे तो फिर तो उनके पास कोई अपोजिशन नहीं रहेगी, तो मेरे ख्याल है फिर तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा।
बारह सितारे हैं ना अब तो उनके पास, बारह सितारे हैं।
लास्ट कॉल अच्छी रहेगी।
जी ओके, यस हाजी व्यास भाई, सारे सारे क्वेश्चन का जवाब दे दें आप।
वो सरदार भाई ने जो कॉल की थी उनका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और उनकी बात ठीक है कि हमें एक दो दफा नहीं, हमें काफी अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, हमें मैच्योरिटी की जरूरत है। तो आखिरी बात यही है कि हमारे लोग चाहे आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो दिल छोटा ना करें। मुश्किलें इतनी पड़ेंगी आसान हो गई, ये जो मुश्किलें होती हैं ये तुंदिए वादे मुखालिफ से ना घबरा है उखाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए ये मुखालिफ जो बात होती है इसलिए चलती है,
घबराना नहीं।
आप देखें कल तक इमरान खान को ये इनका बड़ी हेल्प हो गई इमरान की एब्सोल्युटली नॉट में और बैगर्स नॉट चूजर्स में, कि इमरान खान को अगले इलेक्शन के लिए ये पता चल गया कि मुझे 135 ये बंदे जो हैं ये मेरे साथ इस मुश्किल में खड़े रहे हैं। जब उनके सामने 30-30 करोड़ के बैग पड़े हुए थे तो उन्होंने 30 करोड़ के बैग की तरफ नहीं देखा, मेरे साथ स्टिक रहे। तो अब 130 हलकों के टिकट तो इमरान के फाइनल इन्होंने करा दिए अपोजिशन वालों ने, अब इमरान को अगले इलेक्शन में बाकी जो 130-140 हलके हैं उन पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये हेल्प तो वो कर रहे हैं उसकी, इमरान को अगले इलेक्शन में अपनी महंगाई की और अपने इतने लाख नौकरियां और वो हाउसिंग घर उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट और बैगर्स आर नॉट चूजर्स इन दो सेंटेंस पे वो अपनी अगले इलेक्शन की कंपेन चला लेगा, और वो आपको पता है बोलता किस तरह है, वो इसी पे चलाएगा। तो हेल्प तो इमरान खान की गायबी तौर पर कहीं ना कहीं से हो रही है, अब वक्ती तौर पर अगर ये फैसला उसके अगेंस्ट आया भी है, हु नोज कि कल इसी फैसले ने आगे जाके किस तरह अनफोल्ड होना है। और मुझे तो अभी भी लगता है कि शायद ये, क्योंकि बहुत बड़ी हमारे साथ हाथ करके मियां बिरादरान वगैरह लंदन पहुंचे हैं, तो पता नहीं क्या होता है आगे चल के।
फ्यूचर क्या देखते हैं फयाज भाई, फ्यूचर क्या देखते हैं इस मुल्क का, बस आखिरी क्वेश्चन है मेरा।
फ्यूचर अगले हफ्ते डेढ़ में डिसाइड होना है, क्योंकि हमारे लोग जल्दी डिसहार्ट भी हो जाते हैं। हमारे लोग डिसहार्ट हो जाएंगे अगर टोटली इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया गया तो। अगर इमरान खान को थोड़ी थोड़ी सांस लेने की मौका दिया जाता रहा तो इमरान खान इस कौम को अकेला तनहा नहीं छोड़ेगा, और अगर इमरान खान खड़ा रहा तो लोग भी उसके साथ खड़े रहेंगे, तो मुकाबला जमा रहेगा, और मुकाबला जमे रहने में ही बेहतरी है। असेंबली में इमरान खान मौजूद रहे, अपने 110, 120, 125, 150 जितने भी उसके साथ खड़े रहते हैं उनके साथ असेंबली में मौजूद रहे, और डेली बेसिस पे इन्हें टफ टाइम दे, केसेस बनाते हैं, केसेस को फेस करे, जलसे जुलूस में वो वैसे माहिर है, लोग उसके साथ लगे हुए हैं, एब्सोल्युटली नॉट का नारा उसके हाथ में है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए।
घबराना नहीं है। फयाज बिलाना, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, एंड वक्तन फवक्तन आपको
अमेजिंग अमेजिंग फयाज भाई, आप जैसे जर्नलिस्ट जो है ना वो इस कौम इस मुल्क की शान और जान है। इट इज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू ऑल,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वी लव यू।
5:32 हो गए हैं, कुछ स्पॉन्सर के पैगाम, एंड विल बी राइट बैक।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
बैंक अल्फला पेश करता है रोशन डिजिटल अकाउंट। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये अकाउंट फौरी डिजिटली खुलवा सकते हैं। अभी www.bankalfala.com विजिट करें, आज ही अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। इस डिजिटल अकाउंट में जब चाहे पैसे डालें और जब चाहे पैसे वापस ले जाएं, और पाएं अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के मौके। ये बैंकिंग का नया अंदाज है और एक नए दौर का आगाज है। बैंक अल्फला, रोशन मुस्तकबिल, डिजिटल पाकिस्तान।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
दारुल खैर सेंटर इस्तोविल, जहां एक मुकम्मल इस्लामिक सेंटर बनने जा रहा है, ताकि इस्तोविल में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आसानी हो। यहां डेली और जुमे की नमाजों के साथ साथ इवनिंग हिफ्स क्लासेस और संडे को कुरान क्लासेस का आगाज हो चुका है। 6000 स्क्वायर फीट पर बनेगा इस्तोविल का नया पहला इस्लामिक सेंटर। May 13 को क्लोजिंग डेट है, इस नए काम में दिल खोल कर ताउन कीजिए। फॉर डोनेशन विजिट darulkhair.ca या कॉल कीजिए 416-292-1818 या 416-738-5934.
इस हफ्ते इफ्तार रेडी करें बड़ी सेविंग्स के साथ। फूड बेसिक्स में आए और पाए 540 ml सीडर फिनिश या चिकपीस या बीन्स 4 फॉर जस्ट $5। बोना चमीम खजूर सिर्फ $1.88 ईच। लो हो गई इफ्तार रेडी और लो हो गई सेविंग्स। फूड बेसिक्स वेयर यू ऑलवेज गेट मोर फॉर लेस।
डाइवोर्स या कस्टडी की लड़ाई जिंदगी की सब तो औखी लड़ाई होंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे होंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकिया है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन 9058747171।
जी साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मेरे साथ अफसोर रमज़ान के दिन हैं और ग्रिलन हट से इमरान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम।
ग्रिलन हट सुना है कि माशाल्लाह उसने एक और कदम पिक किया है, और क्या है रमज़ान का स्पेशल, क्या है? पहले तो आप अपना एड्रेस दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए और हमें बताइए कि व्हाट इज़ स्पेशल इन रमज़ान।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ोन नंबर इज़ 905-405-8383, 905-405-8383। हमने 3 कॉम्बो जो हैं वो लॉन्च किए हैं। पहला कॉम्बो है जिसमें 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं, और इसमें जो है बिरयानी होगी, कबाब होंगे, कबाब आप कोई से भी ले सकते हैं, चिकन, बीफ, दम या ग्रिल। इसमें गार्लिक नान होगा, खजूरें होंगी, दाल होगी, सैलड होगा और चटनी होगी। दिस इज गुड फॉर 4 to 5 पीपल। दिस इज वर्थ $48, नो टैक्स ऑन इट, नो टैक्स ऑन इट।
अच्छा।
एंड आफ्टर दैट इफ यू आर लुकिंग समथिंग 8 से 10 लोगों के लिए, देन वी हैव अ कॉम्बो जिसमें एक पूरी कढ़ाई होगी विच इज 2 किलो, बिल्कुल ताज़ा बनी हुई, और उसमें बिरयानी की एक ट्रे होगी, उसमें 8 कबाब होंगे, चिकन या बीफ, 8 रेगुलर नान होंगे, सैलड, डेट्स एंड दाल, और ये $109, नो टैक्स ऑन इट।
और टेक आउट भी कर सकते हैं,
ये टेक आउट, ये भी टेक आउट है सारा।
दिस
इज ऑल टेक आउट, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट मंथ एंड अ हाफ।
10 लोगों का क्या टेक आउट है आपका?
एक पूरी कढ़ाई होगी उसमें
2 किलो की,
हाँ। और उसमें उसके साथ एक बिरयानी की ट्रे होगी,
हाँ।
और उसमें 8 कबाब होंगे, चाहे वो चिकन के ले लें, हाफ एंड हाफ ले लें, चिकन, बीफ, दम, ग्रिल, जो उनका जी चाहे। फिर उसके साथ 8 नान होंगे, और सैलड, चटनी, डेट्स और दाल भी है उसमें, दाल मिक्स,
हाँ।
तो वो उसका एक पोर्शन होगा। तो अगर बोनलेस में चाहिए 125, बोन के साथ चाहिए तो 109, और इसी तरह इसी में आपको 5 लोगों के लिए चाहिए, द सेम पैकेज इज गुड फॉर $65।
यानी उसी के अनबिलीवेबल, दिस इज क्वाइट अनबिलीवेबल,
इट्स अ रमजान स्पेशल, सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी रमजान वी थ्रो सम स्पेशल,
पीपल कैन कम एंड ईट ओवर देयर।
नॉट येट, वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी विल बी टेकिंग अनदर 1 month। As I told you, I'm just talking
by the way, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि इमरान भाई का बिजनेस माशाल्लाह बहुत वसी होने जा रहा है और उसी पे आजकल काम हो रहा है,
उसी पे मैं काम, उसी पे, इसलिए मैं पिछले 2 माह से आपके पास ना आ सका, ना अल्हम्दुलिल्लाह बात हो सकी।
माज भाई, अब तो
वी जस्ट
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर फीट में जा रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रिलन हट इज अ ग्रेट प्लेस टू हैव फूड। So you cannot have food inside, but you can order and take out.
Just maybe another 4 to 6 weeks. Alhamdulillah, when we reopen it, you will have variety of food, inshallah.
Grill and a Hut, sahab, ye Drew Road pe, 1935 Drew Road pe, Drew and Bramley, aap keh sakte hain, Drew and Bramley. کل ہمارے ساتھ ہوں گے نعمان اعجاز. ایک اچھی سی بات فار 30 سیکنڈ روزے کے بارے میں کہتے ہیں.
حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں فرمائیں, آج میں صرف ایک چیز کہوں گا اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. اور برکت کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک ارادے کو جو آپ کے کسی عمل سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اپنے اعمال اس طرح کے کر لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے.
مگر میں جب دنیا کو دیکھتی ہوں نا تو there was a time کے جھوٹ بولنے کے بعد انسان شرم. It was a time, مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ کبھی ماں باپ سے ڈانٹ پڑتی تھی, وہ کہتے تھے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرو, کیونکہ جب جھوٹ بولتے تھے تو بے اختیار آنکھ جو تھی نا وہ
چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا, چور
کی داڑھی میں چتیر. تو پھر آج کل کے دور میں آنکھ سے آنکھ ملا کے جھوٹ بولا جاتا ہے. اور اس وقت سب سے بڑا غم, بلکہ خلیل الرحمان جو کیا ہیں وہ جو تیرے خوشبو میں برے خط میں جلاتا کیسے, خلیل کیا نام ہے ان کا, خلیل الرحمان, وہ کہتے ہیں کہ مجھے غم پاکستان کا یہ ہے. ایئر پہ ریڈیو پہ یہیں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی پیتا ہوں تو تھوڑی سی پیتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں تو سارے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اب ہم غلط کام بھی کرتے ہیں اور غلط کام کو ہم جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. تو پھر آپ جو بھی بات کر رہے ہیں تو اب تو ارادے ہی سارے ہمارے متزلزل ارادے ہیں.
ایشو یہ ہے نا کہ آج کے دور میں علم کی بنیاد پہ تو کوئی آپ کے ساتھ بحث نہیں کرتا, اور جو بحث ہوتی ہے وہ تو صرف اتنی ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جہالت تم میں زیادہ یا مجھ میں زیادہ.
بہت خوبصورت, بہت شکریہ, بہت شکریہ شازیہ جی. ہمارے ساتھ شامل ہوں گی 6 بجے ڈاکٹر
کوکب جاوید ہمارے ساتھ.
کوکب جی السلام علیکم, ہاؤ آر یو بھائی؟ غصہ نہ کری ہوں میں کی کرا, حالات میرے قوم سمجھتی نہیں ہے. آپ رپورٹس پڑھیں, خدا کا واسطہ ہے پاکستانی تو اردو بھی نہیں لکھنی اور انگریزی بھی وہ اردو انداز میں لکھنی ہے. اور انٹرنیشنلی اگر آپ حالات دیکھتے ہیں تو یہ رجیم چینجز کے بارے میں آ رہا ہے, کن کن کنٹریز کی رجیم کو امریکہ چینج کرنا چاہ رہا ہے. مگر ہم پاکستانی ہر چیز کو ہی مذاق لیتے ہیں, ہر چیز کو ہی مذاق لیتے ہیں. پرابلمز ہیں, آپ امیجن کیجئے گا کہ آج رشیا کو ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے اس پہ سے انہوں نے نکال کے باہر کر دیا. بچا کے واقعات آپ نے سنے ہیں, رشیا کہتا ہے میں نے وہ کیے نہیں جو میں نے کیا ہے, میں کھل کے مانتا ہوں میں نے کیا ہے مگر یہ سارا سٹیجڈ تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ G20 سے بھی رشیا کو نکال دیا جائے, پھر کہا جا رہا ہے کہ ویٹو سے بھی رشیا کو نکال دیا جائے. ادھر سے چائنا کے اوپر جو صورتحال ہے, پاکستان کو ریپیٹڈلی یہ کہا گیا کہ پاکستان نیوٹرل نہ رہے, انڈیا نیوٹرل رہ سکتا ہے کیونکہ انڈیا ہیز ٹو ڈیل ود رشیا ٹو کیا چائنا کو مار گرانے کے لیے. اور چائنا تو امریکہ, انڈیا تو کوارٹریٹ کا حصہ ہے, بٹ پاکستانی وی آر ناٹ سیریس, وی ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ سیریس. اب حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں, میں کیا کروں. 5 بجے سے آپ کا انٹرویو لینا چاہ رہی تھی مگر اتنا ہاٹ انٹرویو چل رہا تھا, آئی کوڈنٹ ٹیک یو آن. کوکب جاوید
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کتنے ناراض؟
میں آپ سے تو پتا ہے نا, میں آپ سے ناراض ہوتا ہوں نہ غصہ ہوتا ہے کوئی, میں جانتا ہوں, ریسپیکٹ کرتا ہوں, جانتا ہوں آپ دونوں اس پر کے سب بہت بزی ہوتے ہیں.
نہیں سب بزی نہیں ہوتے, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پروگرام آپ کے ریفرنس سے, آپ کے تعاون سے چل رہا ہے اور قطرہ قطرہ دریا میں شبد. اور مارگیجز بہت امپورٹنٹ ہے, بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج ہی میری کسی بندے سے بات ہوئی, میری ہی ایک پراپرٹی اس نے خریدی ہے, تو اب ان کا اب مار کون گیا, ایجنٹ مار گیا, ایجنٹ نے کلائنٹ کو اپنے کو صحیح مشورہ نہ دیا. پراپرٹی اس نے خرید دی, مارگیج اور نو کنڈیشن پراپرٹی خریدی ہے, مارگیج ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے, وی اسٹل ہیو اراؤنڈ اے منتھ, وی ہیو 1 منتھ, بٹ اگر کسی کی مارگیج نہ ہو رہی ہو تو ہاؤ کوکب جاوید کین ہیلپ؟
دیکھیے جی بڑا سمپل سا ہوتا ہے, میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو بھی آپ آفر دیں جو بھی ہو وہ آپ کنڈیشنل دیں, اس لیے کہ جو میرے پاس آئیں گے میں ہمیشہ کہوں گا پانچ دن اس کی ویور کے لیے, جو آپ کی جو ساری مارکیج اپروو ہو جائے گی پھر آپ ان کو آفر دے دیں نو ود نو کنڈیشنز. تو یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ وداؤٹ کنڈیشنز آپ نے آفر دے دی اور بعد میں جا کے مسئلہ آ جاتا ہے, تو یہ نہیں یہ اس رسک کی یو نیور نو, کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو ان کیس اللہ نہ کرے گاڈ فوربڈ اگر یہ سچویشن ہے اور بیچ میں ٹائم ہے, اگر جو سیلر ہے وہ دو سے تین دن آپ کو میکسیمم دے دے, تو میں آپ کی 24 آور سے لے کے 48 آور دو دن کے اندر میں آپ کی فرم اپروول لے دوں گا, فرم اپروول ود ان 2 days وچ از 48 آورس.
نمبر دیجیے اپنا
416-454-6065.
He is a licensed mortgage broker. License number ہے M09002017. کوکب جاوید ٹرسٹ وردی ہیں, یو کین کاؤنٹ آن ہم. اینڈ ہی سیڈ آن دا ایئر کہ ان 2 days آئی ول گیٹ یور مارگیج ڈن, بٹ یو مسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ یور ہوم ورک بفور ٹائم. فرض کرے ایک آدمی نے سوچا ہے کہ میں نے گھر اب خرید لینا ہے, اس نے ڈاؤن پیمنٹ کچھ نہ کچھ ارینج کر لی ہے. اف ہی کمز بفور اسٹارٹنگ لکنگ ان ٹو ہوم, ایک گھر دیکھنے سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں کتنے تک لے سکتا ہوں, کین یو ارینج آل دیز finances before time?
Oh yes, definitely. جی بالکل. دیکھیے ہمارا جو ایکسس ہے وہ ایک ہمارے بروکریج سسٹم پہ ہوتا ہے, اس میں آپ کی جو ہے انکم بھی آپ کو کوالیفائی جتنی چاہیے ہوتی ہے وہ ہم ایسس کر لیتے ہیں, تو اس میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کا بجٹ کیا ہے. اگر آپ کی آپ نے 5 lakh کا گھر لینا ہے, آپ کی 10% ڈاؤن پیمنٹ ہے, تو ریمائنڈر ہو گیا. اگر آپ کا 10% ڈاؤن ہے تو 450 آپ کی مارگیج ہوگی, تو اس کے لیے آپ کی انکم ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو اگر تو آپ کا وہ جو ہے انکم وہ اس میں کوالیفائی ہو رہی ہے, تو گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو مارگیج اپروو بھی کروا کے دوں گا اور آپ کے گھر کی کلوزنگ بھی کروا کے دوں گا, اور اس کے علاوہ جو آپ کا اپریزل کی کاسٹ ہے وہ بھی میں دوں گا.
I love you. You are the best. اپریزل کاسٹ کوئی ایویں نہیں, $1,000 آرام سے بن جاتی ہے, میں نے 2 دفعہ پے کی ہے.
جی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کا سائز کیا ہے.
نہیں وہ یہ جو اپریزل کی میں بات کر رہی ہوں, یہ بزنس اپریزل جیسے
وہ کمرشل
اپریزل.
جی وہ کمرشل اپریزل, جی وہ بالکل
کمرشل اپریزل کی بات کر رہی ہوں. اینڈ آئی پیڈ فار دا کمرشل, کیونکہ بینک نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب دینا تھا تو بینک وانٹیڈ ٹو گیٹ, اور بینک کا ہی بندہ آیا تھا. بینک نے کرنا تھا. کوکب جاوید لینڈ لینی ہے آپ نے, آپ نے کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا کر سکتے ہیں آپ؟
جی میں اگر آپ کے پاس وہ ویکنٹ لینڈ ہے, ہابی فارم ہے, ایگریکلچر لینڈ ہے, کمرشل ہے, اور آپ کو کسی ریزن کے لیے بھی آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, اس کو اگر آپ نے بائی کرنی میں آپ کو فائنینس کروا کے دوں گا. اگر آپ کے پاس آلریڈی ہے, اگر آپ آلریڈی آپ کے پاس کسی قسم کی لینڈ ہے اور آپ نے ری فائنینسنگ کروانی ہے, تو وہ بھی میں آپ کو کروا کے دوں گا.
آپ کو ہنسی کیوں آئی تھی؟ میرا خیال تھا میرا مائک بند ہے.
جی وہ ماجد بھائی سی ڈی بجا رہے تھے.
4546065 ہماری ویب سائٹ پہ یہ نمبر بھی ہوگا. کوکب جاوید صاحب بہت شکریہ آپ ہم سے.
جی میں چاہتے جی اللہ حافظ کرتے کرتے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ اگر آپ کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائیویٹ مارگیج چاہیے ری فائنینسنگ میں, آپ کی کوئی انکم نہیں ہے وتھ زیرو انکم, کریڈٹ کارڈ کریڈٹ ہے جو آپ کا بروزڈ ہے, آپ کے کریڈٹ کارڈ جو ہے میکس آؤٹ ہو گئے, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ आपकी डेट्स, आउटस्टैंडिंग डेट्स है, उसे आप कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट प्राइवेट, सेकंड प्राइवेट, थर्ड प्राइवेट, नो इनकम, जीरो इनकम, मैं वो आपको अरेंज करके दूंगा।
फर्स्ट प्राइवेट, सेकंड प्राइवेट, थर्ड प्राइवेट, अगली दफा पहले मुझे पहले ही बताया, मुझे तो सिर्फ प्राइवेट लेटर का, प्राइवेट कार का, प्राइवेट रूम का पता है, प्राइवेट फर्स्ट प्राइवेट मॉर्गेज का मुझे नहीं पता।
वो है जी कि जैसे आप, आपके ये पांच ये जो मेजर बैंक्स हैं, उसके बाद आ गया बी लेंडर जो है, वो बी लेंडर वो होते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है, लेकिन वो अपनी लैंडिंग फीस भी चार्ज करते हैं इन मोस्ट केसेस, और इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, उनको इनकम रिक्वायरमेंट होती है, इनकम रिक्वायरमेंट होती है उनकी। लेकिन अब जो प्राइवेट पे आते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो मैं बंदा हूं या मेरी तरह का कोई और घर में पैसे रख के बैठा कि आ जाओ पैसे ले लो,
प्रॉपर
वो इंस्टीट्यूशन है।
416-454-6065, 454-6065, बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
सेंटम फ्यूचर मॉर्गेजेस ग्रुप के साथ कॉकअप जावेद, 416-454-6065। शाजिया जी इंटरनेशनल न्यूज के साथ आएंगे, और उसके बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर मुर्तजा हैदर, रॉयसन के साथ हैं, और उनके साथ डॉन से होंगे हमारे साथ जनाब अनवर इकबाल साहब, डॉन न्यूज़पेपर, डॉन इंग्लिश, डॉन उर्दू, वहाँ से जनाब अनवर इकबाल, आई होप सो वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। आप हमारे साथ रहिए। तो कमर्शियल एंड देन जो चंद एक स्टोरीज हैं, आज एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल है सीबीसी के ऊपर, मुझे भी शाजिया जी ने भेजा, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट टुडे, टुमारो वी विल ट्राई टू कवर, इफ नॉट टुमारो वी विल कवर इट ऑन मंडे इंशाल्लाह।
सेहत एक अनमोल नेमत है जो हर शख्स को हासिल नहीं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अफराद तंदुरुस्ती के हुसूल के लिए आपकी दुआओं और अतियात के मुंतजर हैं। इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान की आबादी के लिए उम्मीद की वाहिद किरण है, जो उनकी बुनियादी सेहत का ख्याल और हर मर्ज में उनकी मदद के लिए मौजूद है। ज़कात के फर्ज से खिदमत के फरीजे तक आप और इंडस साथ साथ।
इस रमजान सहरी हो या अफ्तारी, समोसे हो या कबाब, छोले हो, दही बड़े या फ्रूट चाट, रमजान की हर ग्रोसरी मिलेगी आपको रियल कनेडियन सुपर स्टोर में। मजीद मालूमात के लिए लॉग इन करें @realcanadiansuperstore.ca।
उसकी न्यूज करिए सिर्फ
आपने सुन लिया, इनको इनका माइक ऑन था, इनको पता नहीं था, बट दैट्स ओके, दैट्स ऑलराइट, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है, कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, कोई कुछ नहीं होगा, कोई एवरीथिंग इज डन स्ट्रेट
लाइन,
आज तेजगांव भी नहीं है, आज बुलेट ट्रेन में हम शामिल हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम वाजिद भाई। अच्छा जी जनाब, बस एक एक लाइन की आज खबरें हैं, खबरें वो क्योंकि आज है ही नहीं, टाइम है ही नहीं है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है हमारी,
बहुत शुक्रिया आपके खबरों का,
बस समझाएं वो जी बजट जो है वो भी पेश कर रही हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा क्या उसके अंदर चीजें हैं। जो अपोजिशन के लीडर हैं ऑन्टेरियो के अंदर, स्टीफन डेलडुका साहब, उन्होंने फोर्ड गवर्नमेंट को कहा जी मास्क कभी ना हटाएं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। ब्रैम्पटन से बहुत बड़ी खबर है, ब्रैम्पटन में अक्सर ये शिकायत आती है कि जिस वक्त भी म्यूनसिपल या के स्कूल बोर्ड के इलेक्शन होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। ये इलेक्शन जो है, ये इसका जो सेशन है, इन्फॉर्मेशन सेशन कर रहे हैं वो लोग 12 अप्रैल को 7 PM से 10 PM तक। अगर आप इसमें से कोई कैंडिडेट हैं तो आप वो अटेंड कर लें। इसके अलावा जी सीबीसी की बहुत बड़ी आज की रिपोर्ट आई है, किस तरह बीजेपी और जो है आरएसएस यहां के जो एकेडेमिशियंस हैं उनको फोर्स कर रही है और उनको हाउंड करती है कि ये जो है बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना बोलें। इसमें उन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं चिनिया जंगसम, इनका जो ताल्लुक है कॉल्टन यूनिवर्सिटी ओटावा से है। इसके अलावा स्टीवन जाओ जो है फॉर्मर रिसर्चर विद कनेडियन एंटी हेट नेटवर्क है, उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है। क्रिस्टीन प्लाइस हैं डायरेक्टर फॉर सेंटर ऑफ साउथ एशियन सिविलाइजेशन एट टोरंटो यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मलाविका कस्तूरी जो हैं, शी इज ऑल्सो प्रोफेसर एट टोरंटो यूनिवर्सिटी। इन सब ने कहा है कि जब भी हम कभी इंडिया या मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं हमें हाउंड किया जाता है, हमारे पीछे आया जाता है, हमें बहुत ज्यादा जो है तंग किया जाता है। इसमें बहुत ये लंबी रिपोर्ट है, ये भी बताई नहीं जा सकती, लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी एंड ऑफ दिस आर्टिकल था, इन सब लोगों, सीबीसी कहता है कि जिस वक्त हमने आरसीएमपी को कॉन्टैक्ट किया और आरसीएमपी को हमने कहा कि भाई ये हमारे एकेडेमिशियंस हैं, ये कनेडियन नेशनल हैं, इनको बीजेपी की या मोदी जी की गवर्नमेंट क्यों हाउंड कर रही है, क्यों इनको इतना ज्यादा तंग कर रही है, उन्होंने कहा जी कि हम इंडिविजुअल क्रिमिनल एक्टिविटी के ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। तो अब नाउ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस के यहां पे क्या चल रहा है। यमन के जो एक्साइल्ड प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा जी कि मैं स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने जो है कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यूएई जो था उनके साथ, क्योंकि हुथी जो रेबल्स हैं वो कह रहे हैं अब हम सीज फायर कर रहे हैं, इन्होंने कहा जी ठीक है मैं, अगर मेरे स्टेप डाउन करने से अगर चीजें बेहतर यमन में होती हैं तो मैं कर रहा हूं। सूडान के अंदर खरतूम के एरिया में आज बेतहाशा जो है वहां पे वो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, और वहां पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कह दिया कि जी हमारे सामने लोगों को गोलियां मारी हैं इन्होंने, जो पुलिस वाले हैं और ये जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसने, तो ये काफी ज्यादा जो है बढ़ गया है क्राइसिस वहां पे। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है मोरक्को के किंग मोहम्मद सिक्स जो है उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा रिफ्ट शुरू हो गई थी, उसकी वजह यह थी कि इन्होंने कहा था कि ये जो है अल जजायर जो है उनके जो है एक तो आ सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट हमारे पास इलाज करने के लिए, और दूसरा यह कि जो वेस्टर्न सहारा का एरिया है ये हमारे मुल्क को बिलोंग करता है, उसकी वजह से रिफ्ट थी। लेकिन अब जो ये स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उससे लग रहा है कि ये इनकी प्रॉब्लम्स जो है दोनों मुल्कों में अब हो सकती हैं। यूएनजीए के अंदर जो आज फैसला किया गया कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है काउंसिल जो है उसमें से रशिया को हटाया जाए, तो इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट लुकाशेंको हैं बेलारूस के, उन्होंने कहा जी कि जो भी फैसला रशिया के ऊपर लेना है हमसे पूछे बगैर आपने नहीं लेना है। अब इनकी कितनी हैसियत है यूएन के अंदर वो आप खुद सोचें, लेकिन बहरहाल इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने कहा जी कि कोई दुनिया का आदमी हमको रोक नहीं सकता इस चीज से कि हमने अपने वेपन्स जो है यूक्रेन को देने हैं, तो कोई माइकल लाल हमें रोक नहीं सकता, हम उनको वेपन्स हमने देने हैं और हम देंगे। यूएस सेनेट के अंदर आज वोट हुआ 53-47 से, और यूएस ने आज हिस्ट्री क्रिएट की है, फर्स्ट ब्लैक वुमन की तांजी ब्राउन जैक्सन जो है वो अब 116th जो है बनेगी इसमें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, और इस पर बाइडन साहब जो है उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया है। शेल ने कहा था कि हम जो शेल कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, उसने कहा था कि तरह की है ब्रिटिश कंपनी है ये भी, इसने जब कहा था कि जी हम रशिया से निकल आएंगे और हम रशिया के साथ कोई नहीं करेंगे, आज जब उनको निकलना पड़ रहा है तो वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमको $5 बिलियन के नुकसान हो चुके हैं और भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं। कल हमने आपको अक्षर पटेल जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के चेयरमैन है, उनकी खबर सुनाई थी कि उनको रोक लिया गया है, बेंगलुरु से जाने नहीं दिया गया। आज उन्होंने एक बहुत जबरदस्त द वायर को इंटरव्यू दिया है 48 मिनट्स का, करण थापर साहब उनके जो एडिटर हैं उनको, उन्होंने कहा जी हां जी मुझे भी इसीलिए रोका गया, जैसे कि राणा अयूब मोदी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती है तो उसको तंग किया जाता है, मुझे भी इसलिए रोका गया कि मेरी जो एक किताब आई थी थोड़े दिन पहले वो मोदी जी और उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, इसलिए मुझे रोक के जो है ये लोग तंग करते हैं। यहां पे पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है कि जो कुछ भी आज ड्रामा हुआ है तो उसमें जो अपोजिशन है जाहिर है कि वो बड़ी खुश है। अपोजिशन ने कहा जी कि ये बड़ी डेमोक्रेसी की जीत हुई है और अब हम जो है चीजों को सुधार की तरफ लेके जाएंगे, 40 साल में नहीं हमने लेके जाना था लेकिन अब हम लेके जाएंगे क्योंकि अब जो है प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की गवर्नमेंट थी। हाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं आपको तो पता ही है माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी। अच्छा जी ये जो क्राइसिस है बढ़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अब जो लॉ मेकर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वहां पे पंजाब असेंबली में भी, उन्होंने भी आज कहा है जी कि ये जो चौधरी परवेज इलाही का इन्होंने नाम जो दिया है कि ये जो हैं स्पीकर होंगे पंजाब असेंबली के, हम इसको नहीं मानते हैं, तो यानी कि अब पंजाब असेंबली में भी ये लोग स्यापे डालेंगे। पाकिस्तान के लिए जाहिर है जहां पर ये बुरी खबरें होती हैं वहां पर हम कोशिश करते हैं थोड़ी अच्छी खबरें भी लाएं ताकि थोड़ा सा आपका दिल खुश हो जाए। आपको पता है कि जस्टिन बीवर का गाना एक लाहौर की सड़कों में दो बहनें जो थी मुकद्दस और सानिया, उन्होंने मिलके वो गाना गाया था उसका, ये जो था इसका जस्टिन बीवर का गाना बेबी, बहुत ही ब्यूटीफुल, और पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे थे उनकी मां ढोल बजा रही थी। कैन यू इमेजिन दैट ब्यूटीफुल जो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी उससे इतने इम्प्रेस हुए कोक स्टूडियो वाले कि अब उन्होंने उनको उठाया है और वो अब कोक स्टूडियो में गा रही हैं, और उनका पहला गाना हसन रहीम के साथ जो पीछे हट है वो आया, तो अगर आप कोक स्टूडियो में वो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। शाहरुख खान के बारे में हमने आपको कल ही बताया था कि इटली के साथ फिर रहे हैं, साउथ का बहुत बड़ा जो फिल्म मेकर है उसके साथ, तो आज खबर द कैट इज आउट ऑफ द बैग, क्योंकि आज पता चल गया है कि इटली की एक फिल्म जो आने वाली है लायन जिसका नाम है, शायद उसके लिए जो है वो शूटिंग करें, क्योंकि मुंबई में आज वो शूटिंग करते हुए देखेंगे। तो लोगों ने जब शूटिंग स्केड्यूल्स देखे कि बॉलीवुड की कोई फिल्म आ रही है, उनको पता चला बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं थी। जावेद अख्तर साहब जो है लिरिसिस्ट, आपको पता ही, आज अंधेरी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जिस वक्त पहुंचे तो उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि दो चीजें वहां पे हुई हैं। एक तो वहां पे कंगना रनावत के खिलाफ उन्होंने वो किया हुआ, आपको पता ही है, उन्होंने कहा था कि एक टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया, तो उन्होंने केसेस के ऊपर डेफामेशन का इनके ऊपर किया हुआ था। तो आज ना तो वो थी और ना ही मजिस्ट्रेट साहब थे, उनको बताया गया कि जी वो तो छुट्टी पे हैं। तो उन्होंने लोगों ने कहा तो फिर आप खामखाई क्यों आए, उन्होंने कहा जी नहीं, आई वांट टू मेक इट अ पॉइंट, आई वांट टू कम एंड टेल कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और मैं इस केस को करूंगा। एंड जनाब, अगर आप जतिंद्रा के फैन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि ही टर्न्स 80 टुडे। तो उनका जो है आज एक इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग लिया, उन्होंने कहा जी आप ये जो सफेद कपड़े पहनते थे ना, ये लोगों को बड़े बुरे लगते थे, व्हाइट जो है आपने सूट पहना था उसके साथ के व्हाइट जूते, तो क्या कहते हैं, हाँ जी जब ऊटी में हम वो खूबसूरत किस्म के लोकेल्स में जहां पे फूल ही